Hare Krishna, this class was given at Mayapur Parikrama for the All India ISKCON Food Leaf Foundation. Devotees meet at Mayapur on 5th January 2017 by myself, Prashant Mukund Das.
Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare,
Hare Krishna. तो अभी हम सब भक्ति विनोद ठाकुर जी की समाधि स्थल पे बैठे हैं, तो हम सबको भक्ति विनोद ठाकुर को प्रणाम करना चाहिए उनका प्रणाम मंत्र कह के, तो सभी लोग साथ में दोहरा सकते हैं, नमो भक्ति विनोदाय,
नमो भक्ति विनोदाय,
सच्चिदानंद नामिने,
सच्चिदानंद नामिने,
गौर शक्ति स्वरूपाय, रूपानुगावरायते, नमो विष्णु पादाय,
नमो विष्णु पादाय,
कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले,
कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले,
श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी इति नामिने, नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे, निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे, जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा,
प्रभु नित्यानंदा,
श्री अद्वैत गदाधर, श्रीवासादि गौर भक्तवृंदा,
श्रीवासादि गौर भक्तवृंदा,
हरे कृष्णा
कृष्णा कृष्णा,
कृष्णा कृष्णा हरे हरे,
कृष्णा कृष्णा हरे
हरे,
हरे राम राम
राम राम हरे हरे,
हरे हरे
हरे कृष्णा
हरे कृष्णा।
तो ये जो नवद्वीप मंडल है, यहाँ पर 9 अलग अलग द्वीप है, अलग अलग, तो यहाँ पर 7 नदियां बहती हैं। कई ग्रंथों में 13 नदियों के बारे में वर्णन है, गंगा यमुना सरस्वती गोदावरी, कई नदियां यहाँ पर, कुछ नदियां यहाँ से लुप्त हो चुकी हैं, कुछ नदियां अभी भी यहाँ विराजमान है, तो गंगा सरस्वती का दर्शन हम अभी भी कर सकते हैं यहाँ पर। तो ऐसी नदियां यहाँ पर हैं, और उन नदियों ने, जिसमें से अलकनंदा भोगवती ऐसी अनेकों नदियां हैं जो यहाँ पर विराजमान थी, लेकिन अभी वो अदृश्य है। तो यहाँ पर बताते हैं कि गंगा नदी से 9 द्वीपों का विभाजन किया गया है। 4 जो द्वीप है वो गंगा नदी के पूर्व क्षेत्र में है, और 5 द्वीप गंगा नदी के पश्चिम क्षेत्र में है। तो 4 जो गंगा नदी के पूर्व क्षेत्र में है, उसमें से एक द्वीप जिसमें अभी हम बैठे हैं, इसे बोलते हैं अंतरद्वीप। क्या बोलते हैं? अंतरद्वीप। और दूसरा द्वीप है जिसे बोलते हैं सीमांत द्वीप, और तीसरा है गोद्रुम द्वीप, और चौथा है मध्य द्वीप। तो अगर हम गंगा नदी के इस पार से सभी दर्शन करना चाहें, तो इन 4 द्वीपों के दर्शन हम कर सकते हैं। और गंगा नदी पार करके पश्चिम में 5 द्वीप है, गोद्रुम द्वीप, कोला द्वीप, ऋतु द्वीप, झानु द्वीप, मोद्रुम द्वीप और रुद्र द्वीप। तो इस तरह से ये 5 द्वीप उधर है, और ये इतना बड़ा महान औदर्य धाम है जो कि वृंदावन से भी ज्यादा महत्वपूर्ण है। वैसे तो वैष्णव अपराध और धाम अपराध में आता है कि हमको धामों के बीच के कॉम्पिटिशन देखा जाना चाहिए, कौन सा अच्छा कौन सा खराब है, परंतु ये जो धाम है यहाँ पर कोई अपराध नहीं लगता। यहाँ पर अज्ञानता में भी कोई व्यक्ति जमीन में गिर जाएगा तो चैतन्य महाप्रभु मानते हैं कि वो मुझे दंडवत कर रहा है।
हरी हरी।
अगर कोई व्यक्ति अंगड़ाई लेकर अपने हाथों को फैलाता है तो भगवान सोचते हैं अपने दोनों हाथ ऊपर करके मुझे अपना जीवन समर्पित कर रहा है।
जय हो।
तो ये आदर्य धाम है वृंदावन, तो अगर हम समझना चाहें तो ऐसे है जैसे वृंदावन धाम के रस को प्राप्त करने के लिए एक शहद की शीशी के ऊपर ढक्कन लगाया है, और शहद अगर आप खाना चाहते हैं तो आपको ढक्कन खोलना पड़ेगा, रूल्स रेगुलेशंस पालन करने पड़ेंगे, तब आप शहद को चख सकते हैं। परंतु मायापुर धाम, ये नवदीप धाम जिसे नदिया ग्राम कहते हैं या गौर मंडल कहते हैं, इस स्थान पे शहद की शीशी के ढक्कन लगे होने के बावजूद शहद बाहर टपक रहा है, और कोई व्यक्ति ढक्कन खोले या ना खोले, मतलब मेहनत करे ना करे, शहद को चख सकता है। हरी ओ, तो ऐसा ये धाम है। तो इस धाम का जो प्रकट हुआ है वो कहां से हुआ है? जिस स्थान पे आप बैठे हैं, ये धाम यहीं से प्रकट होता है, क्योंकि इस धाम को गौरंग महाप्रभु जो भगवान श्री कृष्ण के स्वयं भगवान श्री कृष्ण जो कलयुग में आते हैं, श्री कृष्ण चैतन्य राधा कृष्ण नहीं अन्य, राधा कृष्ण का युगल अवतार लेकर चैतन्य महाप्रभु इसी स्थान पे आते हैं। तो इस स्थान को जो अंतरद्वीप के अंदर आता है, इसको बोलते हैं अंतरद्वीप, तो अंतरद्वीप में ही ये स्थान है। और इस स्थान को अगर व्रजमंडल से कंपेयर करें तो इसको गोकुल कहते हैं। तो अभी हम लोग गोकुल धाम में है, वृंदावन के जो गोकुल है, व्रज क्षेत्र का गोकुल है, वो गौर मंडल का योगपीठ स्थान। इस स्थान का नाम योगपीठ क्यों पड़ा? क्योंकि योग शब्द का मतलब है जुड़ना, योग मतलब जुड़ना है ना, 1+1 तो बोलेंगे एक, योग एक, तो योग मतलब होता है जुड़ना। तो अगर देखा जाए तो भगवान कृष्ण जब इस कलयुग के लोगों पर उद्धार करने के लिए कृपा करने आते हैं तो अपना संबंध इस स्थान से बनाते हैं, इसलिए इसको योग पीठ कहते हैं। और जो इस संसार में भटकते जीव है कलयुग के, हम सब, हम भगवान से संबंध स्थापित करना चाहते हैं तो हम भी भगवान से यहाँ योग कर सकते हैं, इसलिए स्थान का नाम योगपीठ है। तो इसलिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण है कि भगवान श्री कृष्ण ने यहाँ पर चैतन्य महाप्रभु रूप में अवतरित हुए, और यहाँ पर पीछे एक विग्रह है जो हम देख सकेंगे, जो किसका विग्रह है? जगन्नाथ मिश्र और शची माता जो गोदी में निमाई को लेकर बैठे हैं, निमाई पंडित जो चैतन्य महाप्रभु का बचपन का नाम था, निमाई पंडित। निमाई क्यों कहते थे? क्योंकि जगन्नाथ मिश्र जो देवकी और यशोदा और नंद बाबा से अभिन्न है, उनके घर में कई पुत्रियां हुई परंतु सभी अपने प्राणों को त्याग देती थी और वो जीवित नहीं रहती थी। तो उन्होंने सोचा जब उनके घर में भगवान अवतरित हुए पुत्र के रूप में, तो उन्होंने सोचा कि इसका नाम रखना चाहिए निमाई, क्योंकि ये नीम की तरह कड़वा होना चाहिए भगवान का, क्योंकि भगवान है। तो जो कलयुग के जीवों मृत्यु का जो यमराज है उसके लिए ये नीम की तरह कड़वा हो, ताकि मेरे बच्चे को कोई यमराज की नजर ना लग सके, और इसका जो नाम ले, इसका जो नाम ले उसके ऊपर भी यमराज की कोई असर ना हो, इसलिए इसका नाम क्या है? निमाई रखना चाहिए। बोलो निमाई की। और नीम वृक्ष के नीचे ही उनका जन्म हुआ, इसलिए उसको निमाई कहते हैं ना, नीम वृक्ष के नीचे उनका जन्म हुआ, इसलिए भी उसको क्या कहते हैं? निमाई कहते हैं। तो जगन्नाथ मिश्र और शची माता जो कि नंद बाबा और यशोदा से अभिन्न है, इसी स्थान पर उनके घर में निमाई पंडित ने जन्म लिया, निमाई ने जन्म लिया, और निमाई इसी स्थान पर खेले बड़े हुए आप सोच सकते हैं। और बाद में भक्ति विनोद ठाकुर जो कि हमारी संप्रदाय के महान आचार्य हैं, ग्रस्त थे, उनसे पहले कोई ऑरेंज कलर नहीं था हमारे संप्रदाय में, जैसे आजकल भक्तों में बड़ा ही जद्दोजहद रहता है, ऑरेंज आर बेटर देन दी व्हाइट्स, पर एक्चुअली देखा जाए तो ऑरेंज वाज नॉट देयर बिफोर भक्ति विनोद ठाकुर, बिफोर भक्ति सिद्धांत माने एक्चुअली। इसका मतलब भक्ति किसी भी आश्रम के ऊपर निर्भर नहीं है, ब्रह्मचारी भी भक्त बन सकता है, ग्रस्त भी भक्त बन सकता है, और हम सब व्हाइट में है तो हमें ये नहीं सोचना चाहिए हमारा मौका छूट गया भक्ति करने का, ग्रस्त में भी भक्ति की जा सकती है, और ये सामने साक्षात भक्ति विनोद ठाकुर विराजमान है। तो भक्ति विनोद ठाकुर के बारे में हम कल चर्चा करेंगे जब गोद्रम द्वीप में जाएंगे, तो अभी हम, क्योंकि हमें आगे भी जाना है, तो अभी हम चर्चा कर सकते हैं स्थान पर कि कैसे भक्ति विनोद ठाकुर ने इस स्थान की रचना करी। तो भक्ति विनोद ठाकुर ने बहुत ही मेहनत करी, वो एक मजिस्ट्रेट थे, आप सभी भक्त जानते हैं, जगन्नाथपुरी के प्रेसिडेंट भी थे, टेम्पल के ट्रस्टी थे, जैसे प्रभु जी अभी ट्रस्टीशिप ले रहे हैं, तो इसी तरह से भक्ति विनोद ठाकुर भी ट्रस्टीशिप लिए थे जगन्नाथ मंदिर की, और साथ ही में वहां पर क्या करते थे? सेवा करते थे। ये नहीं कि ट्रस्टी है या कोई रोल लिया है तो अभी मैनेजमेंट में इतने बिजी है कि भजन का टाइम नहीं है, भजन करने के लिए उन्होंने कृष्णा नगर में उनको पोस्ट किया गया था। यहाँ से जब आप जाते हैं तो एक रेलवे ट्रैक आता है कृष्णा नगर, वहां पर पोस्टेड होने के बाद भी भक्ति विनोद ठाकुर ने स्पेशली अपने घर को कृष्णा नगर से शिफ्ट करके गोदगुम द्वीप में रख लिया। तो लोगों ने बोला उनके सरकार ने, ब्रिटिश सरकार ने, कि आप मजिस्ट्रेट हैं, जो काम दुनिया 8 घंटे में करती है आप उसे आधे घंटे में कर देते हैं, क्योंकि आप भजन करते हैं, आप वेद अध्ययन करते हैं, आप शास्त्र जानते हैं, भागवत जानते हैं, तो इसलिए आप यहीं रहिए कृष्णा नगर में। उन्होंने कहा नहीं, मैं रहूंगा गोदरुम द्वीप में, पर मैं पोजिशन से रिजाइन करता हूँ। तो लोगों ने कहा क्यों? कह रहे क्योंकि मुझे अपने कोर्ट तक जाने के लिए गोदरुम द्वीप से कृष्णा नगर तक जाना पड़ता है, वहां से गाड़ी लेनी पड़ती है और मेरा बहुत समय नष्ट होता है। मैं यहाँ पर आया हूँ अपने गुरु की सेवा करने। मेरे गुरु जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज ने मुझे आदेश दिया है कि मुझे गौरंग महाप्रभु का जन्म स्थान खोजना है, अब मैं खोज नहीं पा रहा हूं तो मेरा समय बर्बाद, क्या करूं मैं फिर? तो उन्होंने कहा कि आप एक काम करिए, मुझे यहां से निर्खस्त कर दीजिए, मुझे छोड़ दीजिए, मैं जॉब नहीं करना चाहता। तो ब्रिटिश रूल के लोगों ने कहा आप जॉब नहीं करना चाहते हैं ना, क्योंकि आपको ट्रेन ट्रैक की प्रॉब्लम है, हम ऐसा करते हैं एक रेलवे ट्रैक कृष्णा नगर से गोदरुम द्वीप तक आपके घर के अंदर डाल देते हैं।
हरी हरी।
और घर के अंदर रेलवे ट्रैक डाल दिया, एक बोगी स्पेशली भक्ति विनोद ठाकुर जी को, जिनका ये विग्रह है, उनको लेने स्पेशली सुबह सुबह आते हैं। तो ऐसे भक्ति विनोद ठाकुर इतने बड़े व्यक्ति होने के बाद भगवान का जन्म स्थान ढूंढ नहीं पा रहे थे कि कहाँ है भगवान का जन्म स्थान। कई लोग यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर जो है मुस्लिम जो जाति के लोग हैं वो ज्यादा थे, उनको आइडिया नहीं था कि जन्म कहाँ हुआ था महाप्रभु का। महाप्रभु आज से 500 साल पहले 1486 में जन्म लिए और वो भी धीरे धीरे लुप्त हो गई थी। स्थल जैसे नदियां अपना रिवर बेड बदलती हैं, गंगा ने भी अपना रिवर का जो है रास्ता बदल लिया था। तो लोग बोलते थे गंगा के उस पार जन्म हुआ था। तो एक दिन भक्ति विनोद ठाकुर अपने गोदरुम द्वीप में जब बैठे जप कर रहे थे और बोल रहे थे हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम राम। तो जब वो बैठे बैठे जप कर रहे थे तो उन्होंने देखा कि एक बहुत जोर की रोशनी हवा में से निकली है और आकर इस स्थान पर गिरी जहां हम बैठे हैं। तो उस स्थान को ढूंढते ढूंढते वो आए तो यहाँ पर एक वृक्ष था जो अभी भी पीछे है, नीम का वृक्ष। उस वृक्ष के पास आकर उन्होंने उस मिट्टी को सूंघा और उनको एहसास हुआ कि यही वो स्थान है जहां पर चैतन्य महाप्रभु का जन्म हुआ था। लेकिन फिर भी अपने गुरु की इच्छा के बगैर उन्होंने किसी चीज का डिसीजन नहीं लिया। ये बहुत इंपॉर्टेंट सेवा है सुनने वाली चीज, कि अपने जीवन में कोई भी कार्य करने से पहले गुरु से संपर्क जरूर करें कि मैं करूं या ना करूं। और अगर ना बोलते और आपकी इच्छा के विरुद्ध हो तो अपने मन को मान लेना चाहिए कि ठीक है गुरु जी जो कह रहे हैं वो ठीक। अभी वो गए अपने गुरु के पास जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज से, उनकी उम्र थी 120 वर्ष, उनकी पलकें इतनी झुक जाती थी कि उनको उठा करके दिखाना पड़ता था कौन मिलने आया है। अब ऐसी अवस्था में उनको लेकर कैसे आए दिखाने के लिए, उनको कहा कि आप चलिए तो बोले मैं तो चल नहीं सकता। कहा कोई बात नहीं मैं आपको उठा के ले चलूंगा। तो टोकरी में, एक बड़ी बास्केट में, लकड़ी की टोकरी में उनको बिठाया जगन्नाथ बाबा जी महाराज को और सर पे रख के इस स्थान पे लाए। और जब इस स्थान पे पहुंचे, अभी भक्ति विनोद ठाकुर ने बताया भी नहीं था कि ये स्थान मैंने ढूंढा है। जगन्नाथ बाबा जी महाराज जो 120 वर्ष के थे, जिनकी कमर पूरी झुकी हुई थी, आंखें झुक गई थी, पलकें उठाकर देखते थे, ऐसे व्यक्ति, ऐसे महाराज, ऐसे सार्वभौम वैष्णव अपनी टोकरी से कूद पड़े, कूद गए सर के ऊपर से ही और कूद के बोलते हैं यही तो निमाई जन्म स्थान है, यही तो निमाई जन्म स्थान, यही निमाई का जन्म स्थान है। तो यहाँ पर उन्होंने इस बात की पुष्टि करी कि चैतन्य महाप्रभु का जन्म इसी स्थान पर हुआ है। तो यहाँ पर भक्ति विनोद ठाकुर को जब इस बात की पुष्टि हुई तो उन्होंने अपने मित्र मंडली में सभी से चर्चा किया कि मैं चाहता हूं कि यहाँ एक मंदिर का निर्माण हो, जो आने वाले समय में जब मिड डे मील के लोग आए तो उनको बैठकर कथा सुनने के लिए स्थान मिल सके। तो इसलिए भक्ति विनोद ठाकुर बहुत मेहनत करना चाहते थे, उन्हें मालूम था, दूरदृष्टा थे, प्रभुपाद के बारे में जानते थे, तो आपके बारे में भी जानते होंगे वो कि मिड डे मील के लोग आने वाले। तो उन्होंने कहा कि भाई मैं जाऊंगा और हर घर से एक एक रुपये इकट्ठा करूंगा। तो एक व्यक्ति ने उनको 10 रुपये दे दिए, कहा ये लीजिए 10 रुपये हमारी साइड से डोनेशन है। तो भक्ति विनोद ठाकुर ने कहा कि मुझे आपका 10 रुपया नहीं चाहिए, मुझे क्या चाहिए, आपका 1 रुपया चाहिए। बोले क्यों? करे क्योंकि अगर मैं आपसे 10 लूंगा तो 9 लोगों की मैं जो सेवा है वो आपसे खत्म करवा दूंगा, 9 लोग जो भगवान की सेवा में जुड़ सकते हैं वो रह जाएंगे। तो इसलिए मैं हर एक व्यक्ति से चाहता हूं तो हमने भी अपने स्कॉन द्वारका में वही नियम अपनाया है, 100 रुपीज पर हाउस पर मंथ 5 साल तक, और द्वारका मंदिर दिल्ली में बनेगा। तो वही हम भी भक्ति विनोद ठाकुर की प्रणाली को आगे बढ़ाना चाहते हैं, वही वहीं से ये सोच आई है सारी। तो इस तरह से ये जो स्थान है इसके ऊपर भक्ति विनोद ठाकुर ने यहाँ पर खुदाई जारू चालू करी और सभी लोगों से मिलकर के सुंदर भवन जो आप देख रहे हैं बनवाया। इसके अंदर उनके पूजित विग्रह राधा माधव विराजमान है, जिसको देख करके श्रील प्रभुपाद जी ने इस्कॉन टेम्पल में भी राधा माधव अष्ट सखी विग्रह लगाए। तो ये जो राधा माधव है ये भक्ति विनोद ठाकुर के स्वयं पर्सनल डिटीज है, इसीलिए भक्ति विनोद ठाकुर ने एक भजन बनाया जो आज हम रोज गाते हैं, जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी यशोदा नंदन ब्रज जन रंजन यमुना तीरा वन चारी जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवर। तो यहाँ पर राधा माधव और साथ में गौरांग महाप्रभु, जैसे अभी हम दर्शन करेंगे तो आप देख सकते हैं गौरांग महाप्रभु है और साथ में राधा माधव पहले अल्टर में है। उसके बाद जब आप दूसरा दर्शन करेंगे तो दूसरे दर्शन के अंदर आपको दिखाई देंगे कि गौरांग महाप्रभु एक नारायण के रूप में खड़े हैं, मतलब दोनों हाथ नीचे। सदा हम देखते हैं गौरांग महाप्रभु हमें समर्पण दिखा रहे हैं दोनों हाथ ऊंचे करके, पर इस विग्रह में गौरांग महाप्रभु नारायण स्वरूप में खड़े हैं और उनके दोनों साइड में लक्ष्मी प्रिया विष्णु प्रिया उनकी दो पत्नियां हैं और उन्हीं के नीचे छोटे विग्रह है और वो छोटे विग्रह है अधोक्षक भगवान विष्णु का और उनके साइड में भू देवी और साइड में लक्ष्मी देवी जो है वो वहां पर विराजमान है। और उसके आगे और इसी के अंदर हम देख सकते हैं कि जो ये अधोक्षज भगवान का छोटा विग्रह है ये जगन्नाथ मिश्र जो थे चैतन्य महाप्रभु के पिता वो उसको पूजा करते थे, क्योंकि उन्होंने विष्णु की इतनी पूजा करी तो उनके घर में भगवान कृष्ण स्वयं आते हैं। तो अधोक्षज विष्णु 8 इंच के छोटे से विग्रह है, आप देखेंगे बड़े ध्यान से तो वो बीच वाले अल्टर में ब्लैक कलर के डिटीज है, तो आप देख सकते हैं उनको। और वो कहां से प्राप्त हुए, वो जब खुदाई हो रही थी तो 1934 में भक्ति सिद्धांत महाराज को प्राप्त हुए थे ये जो विग्रह है और उन्होंने कहा ये जगन्नाथ मिश्र जी के विग्रह है और अब इस विग्रह को क्या करो स्थापित कर दो इस स्थान पे। तो यहाँ पर उसको स्थापित किया गया है और साथ ही में अगले अल्टर में पंचतत्व और जगन्नाथ भगवान है, तो आप देखेंगे पंचतत्व है पांचों और साथ में जगन्नाथ भगवान अकेले हैं, बलदेव और सुभद्रा जी सैर पे गए हैं यहाँ पर। तो जब भगवान जगन्नाथ अकेले होते हैं तो उनको क्या कहते हैं,
पतित पावन?
नहीं, पतित पावन भी बोलते हैं और भी एक नाम है उनका, पतित पावन तो वैसे भी है ही भगवान। क्या बोलते हैं जगन्नाथ जब अकेले होते हैं, व्हेन जगन्नाथ इज विदाउट बलदेव एंड सुभद्रा व्हाट यू कॉल जगन्नाथ, जगन्नाथ को बोलते हैं दधि बमन, ये ओडिशा से आया नाम। आप देखेंगे जगन्नाथ मंदिर में जब भी आप एंटर करेंगे तो गेट कीपर के रूप में अकेले जगन्नाथ होते हैं, वहां पर उनको दधि बमन कहा जाता है। और जगन्नाथ जी का एक और नाम है चका डोला, क्योंकि उनकी आंखें कैसी है, चक्के जैसी है, व्हील्स। तो गौर कृष्ण दास बाबा जी, गौर किशोरदास बाबा जी महाराज जो है वो जब रेल की रेल देखते थे या कोई भी चक्का घूमते देखते थे तो वो जय जगन्नाथ बोलते थे, और क्योंकि उनको लगता था कि जगन्नाथ की आंखें घूम रहे हैं तो चक्का डोला नाम जो है वो बड़ा प्रचलित हुआ गौर किशोरदास बाबा जी महाराज के बाद, चक्का डोला बोलते हैं। तो ये यहाँ पर आप जगन्नाथ दधि भवन चक्का डोला का दर्शन कर सकते हैं, सिंगल जगन्नाथ दधि भवन मीन्स व्हेन जगन्नाथ इज विदाउट बलदेव एंड सुभद्रा, कई घरों में रखते हैं ना खाली, जैसे यहाँ पे जगन्नाथ अकेले दधि भवन और पतित पावन तो है ही भगवान, उनका एक नाम पतित पावन। और बाद में नीम वृक्ष है पीछे योगपीठ जो स्थान है, यहाँ की मिट्टी को ले जाते हैं लोग घर में पॉकेट में डाल के और रोज दूध के साथ में मिश्री की तरह थोड़ा थोड़ा पाते हैं इसको, क्योंकि ये वो स्थान है जैसे ब्रजमंडल की मिट्टी लोग घर ले जाते हैं ना, ब्रह्मांड घाट गोकुल की मिट्टी को उठा के घर में रमण रहती, वैसे इस स्थान की मिट्टी उठा के लोग घर में प्रसाद के रूप में पाते हैं यहाँ पर। तो ये निमाई का जन्म स्थान बहुत ही पवित्र स्थान है और साथ में यहाँ दो शिवलिंग भी है, उसके साथ ही में एक बड़े शिवलिंग है और एक छोटे है। बड़े शिवलिंग है क्षेत्रपाल शिवलिंग, क्षेत्रपाल शिवलिंग वो है जो सभी लोगों को औदर्य धाम के दिव्य स्वरूप के अंदर दर्शन देने के लिए, जैसे हम टिकट निकाल के इधर आ तो गए, लेकिन अभी इसके दिव्य धाम का दर्शन हो या ना हो, ये तभी होगा जब भक्तिमय हमारा जीवन हो, हमारी साधना हो, हमारा प्रेम हो भगवान के प्रति। तो वो क्षेत्रपाल शिवलिंग जो है वो एंटर करने देते हैं उस धाम के अंदर, और छोटे वाले जो शिवलिंग है उनका नाम है गोपेश्वर महादेव। तो वो जो महादेव है वो एंट्री करने देते हैं भगवान से संबंध स्थापित करने के लिए। पहले एंट्री हुई दिव्य धाम में और फिर भगवान से संबंध स्थापित करवाते हैं कौन, गोपेश्वर, छोटे वाले शिवलिंग। तो यहाँ पर कई भक्तों ने दर्शन किए हैं, और फिर आगे जाकर यहाँ एक सुंदर विग्रह है लक्ष्मी नरसिंह। आपने लक्ष्मी नरसिंह सुना तो बहुत है, दर्शन नहीं किया। तो लक्ष्मी नरसिंह भगवान का विग्रह इसके पीछे है, लक्ष्मी जी नरसिंह भगवान की गोदी में बैठी हुई है। लेकिन वो लीला बहुत लंबी है कि कैसे लक्ष्मी जी गोदी में आ जाती है, तो उस पर हम चर्चा नहीं करेंगे, वो दर्शन रह जाएगा। और फिर ये कथा को और शाम को हम और लंबा कर सकते हैं। अंतरदीप क्यों कहा गया और इसको दवदीप क्यों कहा गया, और यहाँ जो है अनेकों स्थान जो हमारे रह जाएंगे उसकी चर्चा हम शाम को अपने जो रहने वाला स्टेइंग गेस्ट हाउस है वहां चर्चा कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी हम यहाँ से चलेंगे, सभी लोग दर्शन करिए। ये है भक्ति विनोद ठाकुर, और सामने जो विग्रह है ये है सखी चरणदास बाबा जी महाराज। ये भक्ति विनोद ठाकुर के शिष्य थे, और इन्होंने भी डोनेशन इकट्ठा करके इस मंदिर निर्माण में बहुत मदद करी, तो इसलिए इनको भी समाधि स्थित किया गया है यहाँ पर, सखी चरणदास बाबा जी महाराज। तो इनकी भी कृपा ले सकते हैं और दर्शन करके फिर हम अगले श्रीवास आंगन की ओर चलेंगे।
हरे कृष्ण, हरे हरे, बहुत सुंदर।